परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखे और स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उसने ज्योतिषियों, पंडितों, शास्त्रियों, तांत्रियों को बुलाया ताकि वे आकर उसके स्वप्न को और इसके साथ साथ उसका अर्थ भी बताएं, और वे इसे बताने में असमर्थ रहे। और तब राजा ने आज्ञा दी कि इन सबों को नाश किया जाए, मार दिया जाए। और तब यह बात दानियल को पता चला और तब दानियल ने सिपाहियों के अधिकारी अर्योक के पास जाकर उससे निवेदन किया कि राजा से कह कि वह मुझे अपने पास आने की अनुमति दे। अर्थात दानियल उन पंडितों की और शास्त्रियों की और ज्योतिषियों की रक्षा करना चाहता था। और मेरे मित्रों, हमने यह भी देखा कि दानियल अपने मित्रों के साथ जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि वह उन स्वप्न को और उसके अर्थ को राजा को बता सके। तो हमने इन बातों को देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दान स्वरूप दिया है, ताकि हम इस जीवन के द्वारा आपको आदर दे सकें, आपको महिमा दे सकें। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन पर आपका प्रभाव होने पाए। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को हर एक प्रकार की बुराई से, हर एक प्रकार के व्यर्थ की बातों से, शैतानी बातों से, शैतान के छल प्रपंच से आप उन्हें बचाएं, अपने वचन के द्वारा उन्हें सामर्थ्य दें, ताकि आपके प्रेम में, डर और भय में अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम विनती करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं और चिंताओं में हैं। पिताजी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उन्हें छुए और चंगाई दें, ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम को महिमा दे सकें। आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको आज के अध्ययन के द्वारा आप आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ दानियल की पुस्तक उसके दो अध्याय को निकाल लीजिए। दानियल की पुस्तक उसके दो अध्याय और 40 से 43 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह धर्मशास्त्र का एक अनुपम पद है। पहले तीन राज्यों की अपेक्षा इस चौथे राज्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस राज्य की व्याख्या में दानियल ने चार पदों का विवरण दिया है, जबकि दूसरे और तीसरे राज्य की व्याख्या में एक ही पद 39 लिखा गया है। मादी, फारसी और यूनानी राज्य। मेरे मित्रों, चौथा राज्य अंतिम दिनों का राज्य है। आपको स्मरण होगा कि दानियल ने नबूकदनेस्सर से कहा था कि उस मूर्ति का उद्देश्य यही था। परमेश्वर मूर्ति पूजक नबूकदनेस्सर से उस मूर्ति के उदाहरण द्वारा अंतिम दिनों पर से पर्दा उठा रहा था। वह विश्व शासक था और वह सोच रहा था कि अंत क्या होगा। मेरे मित्रों, हम अंतिम दिन के समय में वास करते हैं और यह प्रश्न आज तक बना है कि यह संसार कहां जा रहा है। लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम इस मूर्ति पर फिर से ध्यान दें। यह एक विशाल मूर्ति थी जो भयावह थी। मेरे विचार में वह उसे संपूर्ण बेबीलोन में सबसे ऊंची दिखाई दी होगी। वह धातुओं से बनी हुई थी, जिसका सिर सोने का था। सोने का सिर बेबीलोन का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, उसका वक्ष और भुजाएं चांदी की थी, जो मादी और फारसी राज्य हैं। पीतल यूनानी राज्य का प्रतीक था। पैर लोहे के थे, अर्थात वह रोम था। के पांव मिट्टी की थी, जो रोमी साम्राज्य के अंतिम रूप का प्रतीक थी। मेरे प्रियो, यह मूर्ति चार राज्यों को प्रकट करती है और उनके विषय में अनेक अवलोकन किए गए हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में घटी आती जा रही है और इसे विभिन्न रीतियों द्वारा प्रकट किया गया है, जो आज के दार्शनिक विचारों से मेल नहीं खाती है। हमारे विचार में हम दिन प्रतिदिन उन्नति तो करते जा रहे हैं, क्रम विकार बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि हम अधिक विकसित मनुष्य हैं। मनुष्य स्वभाव से ही सदैव अपनी पीठ को थपथपाता आया रहा। परंतु यहाँ उन्नति की अपेक्षा अउन्नति ही रही है। प्रत्येक राज्य अपने पूर्व के राज्य से अधिक गिरा हुआ है। यह उस प्रतिमा में अनेक रूपों में प्रकट है। मेरे मित्रों, आइए हम देखेंगे इसे पहले रूप में। धातु की गुणवत्ता सोना चांदी से अधिक उत्तम है और चांदी पीतल से अधिक उत्तम है और पीतल लोहे से अधिक उत्तम है तथा लोहा मिट्टी से अधिक उत्तम है। दूसरी चीज हम देखते हैं, धातु का अपेक्षित घनत्व। प्रत्येक धातु दूसरी से अधिक घटिया है। ड्रेज लीज एक विद्वान था जिसने इस बात पर ध्यान आकर्षित करवाया था। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रत्येक धातु का स्थान। सिर का सम्मान पांव से कहीं अधिक है। चौथी बात, धर्मशास्त्र का तथ्य पद 39 में है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक आने वाला राज्य जाने वाले राज्य से छोटा होगा। और अब हम पांचवी बात देखते हैं, प्रभुता में विभाजन। प्रभुता का विभाजन दुर्बलता का सूचक है। नबूकदनेस्सर सोने का सिर था, उसके बाद आने वाले मादी और फारसी राज्य को दो हाथों से प्रकट किया गया है, अर्थात दो गुना। परंतु बेबीलोन के दो भाग नहीं थे। इसी प्रकार से यूनानी राज्य सिकंदर महान के समय एक था, परंतु उसके बाद चार भागों में विभाजित हो गया। रोमी साम्राज्य अर्थात मूर्ति की टांगे भी दो थी, परंतु उसके पांव में 10 उंगलियां थी जो लोहे और मिट्टी से बनी थी। परंतु यहां एक बात पर ध्यान दें, एक पत्थर भी उसे स्वप्न में दिखाई दिया। इस पत्थर ने प्रतिमा को चूर चूर कर दिया, अर्थात मूर्ति को चूर चूर कर दिया। यह प्रभु यीशु है जो इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेगा और सोने के सिर से कम या छोटा नहीं होगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति में चार राजा थे जो हर एक पिछले राज्य से छोटे थे, वे विभाजित किए गए थे। परमेश्वर का राज्य वह था जो पत्थर था, परंतु यह पत्थर शासक है और उसका राज्य सोने के सिर से छोटा नहीं होगा। यह शासक प्रभु यीशु की अपेक्षा और कोई नहीं होगा। मेरे मित्रों, वह संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेगा और किसी मनुष्य से मार्गदर्शन की याचना वह नहीं करेगा। यदि आज आप उसे ग्रहण करने का निर्णय नहीं लेंगे तो आप कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि हम उसे ग्रहण करें तो वह हमें अपना पुत्र बना लेता है। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु के पास आएं और अपने जीवन को उससे अर्पण करें, अर्थात उसे अपने जीवन में आने दें, उसे स्वीकार करें और तब हम उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। जी हाँ, यह उसका संसार है, उसी ने इसकी रचना की है। आप उससे विद्रोह नहीं कर सकते, जैसा कि आज लोग सोचते हैं कि यह संसार उनका है, जैसा वे चाहें जी सकते हैं। परंतु जो शरीर है वो आपका नहीं है, आपने उसे नहीं बनाया है, यह परमेश्वर का है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए उसे सुरक्षित रखें, निष्पाप रखें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करना चाहता है। परमेश्वर के पास हमें इस पृथ्वी से हटा देने का पूरा अधिकार है। हम चींटी को घर से निकाल देते हैं, यह हमारा अधिकार है, परंतु परमेश्वर का अधिकार तो परम अधिकार है। जी हां, हम चींटियों को क्यों नाश करना चाहते हैं? क्योंकि वे हमारे प्रयोजन में अपना स्थान नहीं रखती हैं। इसी प्रकार हम में से अधिकांश जन परमेश्वर के प्रयोजन में उपयुक्त स्थान नहीं रखते हैं। यह उसका संसार है और वह इसे अपनी सुविधा के अनुसार चलाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का शासन एक ऐसा कठोर शासन होगा जिसे संसार ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे विचार में तो उस समय उसकी अनुमति के बिना मुर्गा भी नहीं बांगेगा। प्रभु यीशु एकमात्र शासक होगा और यदि आप उसे दंडवत करना स्वीकार न करें तो मेरे विचार में आप उसके उस राज्य में रहना भी नहीं चाहेंगे जो वह इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। यह तो अच्छा है कि शायद उसके पास ऐसे मनुष्यों के लिए कोई भी अन्य स्थान होगा, क्योंकि ऐसों का यहां रहना आनंददायक नहीं होगा। उन्हें यहां लेश मात्र भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर के शासन में एक ही राज्य की संपूर्ण प्रभुता होगी। अर्थात उसमें एक ही राजा होगा, उसी की इच्छा सर्वोपरि होगी और सबको उसे मानना होगा। अतः आपके और मेरे लिए उचित होगा कि उसे दंडवत करना अभी से सीख लें, उसकी प्रभुता स्वीकार करना हम सीख लें। एक दिन तो वह अवश्य सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से पूर्व हम एक और बात पर ध्यान देंगे। रोम के बाद कोई भी विश्व शक्ति उदय नहीं हुई। रोमी साम्राज्य अंतिम था और अंत के दिनों में भी वह रहेगा। अन्य राज्य आए परंतु सब नष्ट हो गए और रोम साम्राज्य बना रहा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि हून जाति का अत्तिला ने आकर नगर को नष्ट तो किया था, परंतु जो उसने वहां देखा उससे वह ऐसा आश्चर्यचकित हुआ कि उसे उस नगर की व्यवस्था करने पर आत्मविश्वास नहीं रहा और वह अपने बर्बर साथियों को लेकर वहां से चला गया। रोमी साम्राज्य भीतर से नष्ट हुआ था, किसी बैरी ने उसको नष्ट नहीं किया था। आज रोम यूरोप के महान देशों में है, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन सब एक समय रोम साम्राज्य के भाग थे। रोम का कानून और उसकी भाषा आज भी है। आज लितानी भाषा बोली तो नहीं जाती है, परंतु फ्रांसीसी, स्पेन की भाषा आदि को समझने के लिए उसका आधारभूत ज्ञान आवश्यक है। उसकी युद्ध की आत्मा भी आज जीवित है। जिस दिन से रोमी साम्राज्य अलग अलग देशों में विभाजित हुआ, उसी दिन से यूरोप युद्ध में व्यस्त है। मेरे प्रियो, आज यूरोप में क्या हो रहा है? आज उनमें एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जन्म तो ले रही है। वहां का युवा वर्ग इटली वासी या जर्मनी वासी कहलाना नहीं चाहता है, वे अपने आप को यूरोप वासी कहना चाहते हैं। यह मानसिकता निश्चय ही उस आने वाले शासक का मार्ग तैयार करती है जो भविष्य में रोमी साम्राज्य को संगठित करेगा। धर्मशास्त्र में उसे पाप का पुरुष या ख्रिस्त विरोधी कहा गया है। आज यूरोप का बाजार सार्विक है, परंतु जब तक प्रभु यीशु मार्ग की बाधा न हटा दे, तब तक वह पुरुष प्रकट न होगा और यह सब पूरा न होगा, क्योंकि वह शैतान का जन है। इसलिए वह तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने नाम के निमित्त एकत्र न कर लेगा। ऐसा करने के बाद वह कलीसिया को पृथ्वी पर से उठा लेगा। परमेश्वर अपना कार्यक्रम चला रहा है, चाहे वह प्रकट हो या ना हो। अतः रोमी साम्राज्य को संगठित करने वाला आएगा। मैं इसे रोमी साम्राज्य का पुनरुत्थान नहीं कहूंगा, क्योंकि वह राज्य मरा नहीं है। नर्सरी कक्षा की एक अंग्रेजी कविता में हम पढ़ते हैं, हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर से गिर गया था और चकनाचूर हो गया। राजा के सब कर्मियों और घोड़ों ने यथाशक्ति उसे जोड़ने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। इसी प्रकार से रोमी साम्राज्य को संगठित करने का अनेकों ने प्रयास किया, परंतु वे सफल न हुए। रोम की कैथोलिक कलीसिया का भी आरंभ में यही उद्देश्य था। नेपोलियन ने भी यह प्रयास किया, जर्मनी के अनेक शासकों ने यह प्रयास किया, परंतु उसे संगठित करने वाला मनुष्य आज तक प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रकाश में लाने के लिए अभी तैयार नहीं है। अन्य जाति विश्व शक्ति का विनाश को हम देखते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना होगी। मेरे मित्रों, इस अंतिम राज्य का अंत क्या होगा? लोहा और मिट्टी के राज्य का। पांव की उंगलियों द्वारा व्यक्त 10 राज्य हैं। 10 उंगली 10 राज्य। मेरे विचार में मिट्टी इन 10 राज्यों की जनता की प्रतीक है। लोहे का अर्थ है कि रोम अपने भावी समय में भी प्राचीन राज्य ही होगा। इसका अंत कैसे होगा? अध्याय 2 के इस उपसंहार में हमें इसका उत्तर मिलता है कि वह किस प्रकार से अंत होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि राजा ने स्वप्न देखे हैं और स्वप्न में उसने एक मूर्ति देखी है और मूर्ति को 4 भागों में बांटा गया है। सिर, उसके वक्ष और तब उसके पैर और तब उसके हम उंगलियों को देखते हैं कि ये 4 भागों में बांटा गया है और अलग अलग धातुओं से बने हैं और ये 4 राज्यों को दर्शाते हैं। और जिस प्रकार से अब तक हमने इसके विवरण को देखा है, इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर इस मूर्ति के दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा राजा को क्या बताना चाहता है। अर्थात अंत में परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का राज्य सदैव स्थिर रहेगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के राज्य में यदि आना चाहते हैं तो यह निश्चय ही है कि हमें उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि तैयार करना है तो हमें प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, क्योंकि हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, यदि आज हम उद्धार पाने की इच्छा रखते हैं और उद्धार पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि वह हमारे पापों के बदले क्रूस पर बलि हो जाए। अर्थात वह हमारे पापों के बदले वह मर गया। उसने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उठा ली ताकि मैं और आप उस भयानक मृत्यु से, उस भयानक दर्द से बच जाएं। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है और अनंत जीवन प्राप्त करता है। यदि आज आप पाप में जीवन जी रहे हैं, यदि तो आज आपके लिए भी अवसर है कि आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं और उससे अपने पापों की, गलतियों की माफी मांगें, और वह आपको अवश्य ही क्षमा करेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नाश किया जाए। वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्धार पाए और उसके साथ संगति में बना रहे। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम अपने जीवन में इस वचन के प्रकाशन के द्वारा हम जांचें और अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज आप अपने जीवन में एक उचित निर्णय लेंगे और आने वाले अगले अध्ययन के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि हम फिर से इनकी आगे की बातों को सीख सकें कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और क्या सिखाना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। जाऊंगा।